नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया और तमिलनाडु के सेलम में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड के बासल में शुरू हो रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद श्री मोदी का यह पहला रोड शो है। इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और पलक्कड़ तथा पोन्नानी संसदीय क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों ने भाग लिया। रोड शो के बाद श्री मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएमके के साथ सीटों का समझौता होने के बाद एनडीए को नई ऊर्जा मिली है।
के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं।
इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, अजय माकन तथा केसी वेणुगोपाल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो सकती है। लोकसभा के पहले चरण की चुनाव अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देशभर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। एक रिपोर्ट।
आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग हर संभव कदम उठा रहा है। आयोग ने सभी मौजूदा चुनौतियों या चुनाव के दौरान होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर योजनाएं बनाई हैं। चुनाव आयोग के लिए चुनावों में पैसे का दुरुपयोग, गलत सूचना का प्रसार और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ बाहुबल मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं। चुनावों में बाहुबल के प्रयोग को रोकने और मतदाताओं को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए आयोग हिंसा संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती कर रहा है। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रखी जाएगी। इसके साथ साथ विभिन्न इलाकों में असामाजिक तत्वों और हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी नजर रखी जाने की योजना बनाई गई है। देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में चेक पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया, नई दिल्ली।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन हो रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल ऐप पर प्राप्त हो रही शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है।
जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की गई 16 तारीख से राज्य में भी हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए जो 24 घंटे में जो वेबसाइट्स हैं, जो कार्यालय हैं, पोस्टर्स वगैरह हटा दिए थे। 48 घंटे के अंत में हम लोगों ने सभी जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहां से भी पोस्टर्स वगैरह हटा दिए। साथ में 72 घंटे में अब हम लोगों ने प्राइवेट प्लेसेज पे भी जो लगे थे, जो अवैध ढंग से लगे थे पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, उसको हटाया। साथ में जो सी विजिल में हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, करीब 325 कंप्लेंट्स अब तक आई और उसमें से 111 सही पाई गई, तो उसको भी पोस्टर बैनर हटाए गए हैं, जिसमें कि भारत निर्वाचन आयोग का जो 100 मिनट में कंप्लेंट को निस्तारित करने का, उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कार्य किया। सी विजिल को हम आपके मार्फत भी आमजन तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप अपनी शिकायत घर बैठे सी विजिल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो सब अपलोड कर सकते हैं। अपना नाम ना देना चाहे या अपना मोबाइल नंबर देंगे तो हम आपको कंप्लेन का पूरा जवाब भी देते हैं।
जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की तैनाती के अलावा यहां 19 अप्रैल से 5 चरणों में होने वाले संसदीय चुनावों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन विभिन्न बटालियनों की पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती करेगा। अतिरिक्त बलों की तैनाती समूची कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ जिलों की सीमाओं पर की जाएगी। एक रिपोर्ट।
समूची कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ जिलों की सीमाओं पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी ताकि आतंकी लोकसभा चुनावों के पहले या चुनावों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक वातावरण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकें। चुनाव आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 635 कंपनियों की तैनाती की स्वीकृति दी है। पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिले समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहां की अधिकतर सीटें अनंतनाग, पुंछ और राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। उधमपुर डोडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। जम्मू रियासी सीट का चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा। अनंतनाग, पुंछ, राजौरी में मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा। श्रीनगर में मतदान चौथे चरण में 13 मई को होगा और बारामूला में मतदान पांचवें चरण में 20 मई को होगा। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर,
चुनावी गतिविधियों की खबर,
देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट बंटवारा समझौते के बाद ये फैसला आया है। इस समझौते में श्री पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने त्यागपत्र की घोषणा ये कहते हुए की कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय किया गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। इस समझौते के तहत पीएमके 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पीएमके के संस्थापक एस रामदास, अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में दोबारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निवर्तमान राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदर्यराजन का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद ये नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के रेपनपल्ली जंगलों में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने कहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक विशेष अभियान यतीश देशमुख के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के एक दल की तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इन नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित कर रखा था। इलाके में तलाशी अभियान जारी है और विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। सरकार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की एक टिप्पणी के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग विकास कार्यक्रमों और अवसंरचना परियोजनाओं से लाभान्वित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आधारहीन तर्क की कोई वैधता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बार बार सम्मन के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन दावों को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जून हाओ के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग जू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा। महिलाओं के डबल्स में छठी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की मेलिसा ट्राइस पुष्पिता सारी और राचेल एलेसिया रोज की जोड़ी से होगा, जबकि ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की एनीजू और कैरीजू की जोड़ी से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। वहीं हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यों की हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा। हरमनप्रीत सिंह श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। पेरिस ओलंपिक के कारण ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सार्जेंट पुलकित नारंग, सार्जेंट मोहम्मद नूर हसन और एलएसी हिमांशु सहित वायुसेना के 19 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने खेलों में शानदार उपलब्धियों के लिए इन वायुकर्मियों की सराहना की।
On behalf of all the air warriors of the Indian Air Force, I urge you to keep up the hard work, strive for greater laurels. We hope to see more winners here being felicitated next year, in particular after the Olympics. Let us not only celebrate the past victories, but strive for greater heights in the years to come, breaking boundaries and continue to showcase the indomitable spirit of the Indian Air Force.
नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 के तीसरे संस्करण की आज क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोविमा में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मैथ्यू रियो ने खेलों के शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। श्री कुमार अभी म्यांमा में भारत के राजदूत हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि 21 मार्च तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज तथा तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया और तमिलनाडु के सेलम में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।